नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव जी। नमस्कार मलय जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार।
आगे बढ़े उससे पहले मुख्य समाचार जान लेते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री का आज कुवैत के साथ महत्वपूर्ण फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर मैच में आखिरी बार राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज अमेरिका का सामना पाकिस्तान से। कल भारत ने पहले मैच में आयरलैंड को 8 विकेट से शिकस्त दी। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबिडन की जोड़ी फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में हारी। इगा स्वियातेक महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंची। और लक्ष्य सेन इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री का आज कोलकाता में कुवैत के साथ महत्वपूर्ण फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर मैच में आखिरी बार राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। सुनील के 19 साल के बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय करियर का ये अंतिम मैच है। एक रिपोर्ट।
भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री आज जब अपना आखिरी मैच खेलने मैदान में उतरेंगे तो सभी प्रशंसकों की भावनाएं चरम पर होगी। 19 साल तक राष्ट्रीय फुटबॉल में अपना दबदबा बनाए रखने के बाद छेत्री अपनी टीम को विदाई के रूप में अगले दौर में पहुंचाना चाहेंगे। भारतीय टीम के लिए छेत्री के नाम 150 मैचों में 94 गोल हैं। वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ी हैं। छेत्री को साल 2011 में अर्जुन पुरस्कार और 2021 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2019 में पद्मश्री से भी अलंकृत किया जा चुका है। इसके अलावा छेत्री ने अपने शानदार करियर में 6 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
मलय जी, साल 2002 में मोहन बागान के साथ छेत्री ने प्रोफेशनल फुटबॉल करियर की शुरुआत की थी और कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम मोहन बागान का होम ग्राउंड है और अब इसी मैदान पर आज छेत्री देश के लिए अपना आखिरी मैच खेल रहे हैं। काफी भावुक क्षण है।
बहुत भावुक क्षण है। 19 वर्ष तक जिस व्यक्ति ने फुटबॉल के मैदान पर अपने टांगों के कमाल दिखाए हों, जिस व्यक्ति के नाम 94 अंतर्राष्ट्रीय गोल लिखे गए हों, जो दुनिया में तीसरा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जिसने ये मुकाम हासिल किया है, जब उसे अलविदा कहने का समय आता है तो एक ऐसा स्टेडियम जो दर्शकों से आज खचाखच भरा होगा, जहां पे बहुत दिनों से भारत की टीम कोई मैच हारी नहीं है, इससे बढ़िया विदाई के क्षण क्या हो सकते हैं उस खिलाड़ी के लिए।
और बिल्कुल, जो छेत्री ने वर्ल्ड फुटबॉल के स्लीपिंग जायंट्स कहे जाने वाले भारत देश को फुटबॉल की जो उसकी उम्मीदें थी उसको आगे बढ़ाया है।
बिल्कुल, 60 के दशक में जब भारतीय टीम एशियाई चैंपियन हुई और उस समय जो बड़े बड़े नाम थे पीके बैनर्जी, अरुण लाल घोष, चुन्नी गोस्वामी, उनके बाद जो सुखविंदर सिंह, इसके बाद जो भारतीय फुटबॉल एक तरह से बिल्कुल बैकग्राउंड में चला गया था, जहां लगता नहीं था कि भारत वही देश है जहां इस तरह का फुटबॉल खेला जाता था, वहां बैचुंग भूटिया और क्षेत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनका लेना जरूरी इसलिए हो जाता है कि उन्होंने फुटबॉल को दोबारा, भारतीय फुटबॉल को दोबारा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया। अब यही मैच आज का देख लीजिए, अगर भारत ये मैच जीत जाती है तो अंतिम 16 में भारत को जगह मिलेगी, अंतिम 18 में भारत को जगह मिलेगी, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जहां आप 121वें स्थान पर हैं फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में, वहां अगर आप इस तरह की कोशिश कर रहे हैं तो एक व्यक्ति जो उत्प्रेरक कैटलिस्ट का काम करता है, उसमें अगर नाम लेना होगा किसी एक खिलाड़ी का तो सुनील छेत्री का, और लगता है आज उनके लिए बहुत भावुक क्षण है और इस क्षण वो अपने खेल पर बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब तक जब तक 63वें मिनट का खेल हुआ था छेत्री के टांगों से वो कमाल देखने को नहीं मिला, उत्सुकता है। अब देखना यह है कि अभी तक जो गेम 0-0 पर है आगे किस प्रकार बढ़ता है।
जी हाँ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर रहे हैं सुनील छेत्री, तो आज यही आशा करते हैं कि आज भी वैसा ही जो चमक है वैसा ही जादू करके दिखाएंगे। और आपने पहले ही बता दिया है कि हाफ टाइम तक भारत और कुवैत में से किसी ने भी कोई गोल नहीं किया है और भारत ग्रुप ए में 4 मैचों में 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है और उसे विश्व कप की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए जीत की जरूरत है, क्योंकि देखा जाए तो टीम के पास इसमें क्वालिफाई करने का मौका है। वर्ल्ड कप 2026 के लिए और बेहतर रैंकिंग के कारण भारत को 2026 फीफा वर्ल्ड कप में एशिया क्वालिफायर के लिए पहले राउंड में हिस्सा नहीं लेना पड़ा और सीधे दूसरे राउंड में आ गई।
बिल्कुल, और अब तीसरे राउंड में जाने के लिए उसके सामने अफगानिस्तान की टीम है और गोलों के अंतर के हिसाब से देखें भारत की स्थिति बेहतर है। अगर ये मैच जीत जाती है भारतीय टीम तो उसके बाद वो मुकाम हासिल कर लेगी जो आज तक नहीं कर पाई।
देखते हैं आगे चल के क्या होता है, क्योंकि दूसरे राउंड में हर ग्रुप की टॉप टू टीमें तीसरे राउंड में जाएंगी और भारत ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर है, लेकिन ग्रुप के बाकी मैच भी अभी बाकी हैं। अब बढ़ते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज अमेरिका का सामना पाकिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 9 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले आज ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 39 रन से हरा दिया और कल न्यूयॉर्क में भारत ने पहले मैच में आयरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम 16 ओवर में मात्र 96 रन पर सिमट गई। हार्दिक पांड्या ने 3, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट लिए। भारतीय टीम ने 13वें ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 52 और ऋषभ पंत ने 36 रन बनाए। भारत का अगला मैच रविवार को पाकिस्तान से होगा। अगर कल का मैच देखा जाए तो पेसर्स हैं, जो भारतीय पेसर्स हैं उन्होंने कमाल कर दिया और उसके आगे जो आयरलैंड की पूरी टीम थी आसानी से ढेर हो गई।
देखिए बड़ी ही अजीबोगरीब विकेट थी यहां पे, जिसमें 5-5 खिलाड़ी चोट लगे, बहुत कड़ी चोट लगी उन्हें। रोहित शर्मा को 52 पे रिटायर्ड होकर जाना पड़ा। ऐसे में जब ऐसी पिच हो जहां इवन बाउंस हो, गेंद अचानक उछलती हो, कंधे की ऊंचाई से ऊपर आती हो या फिर विकेट कीपर के हाथों पे बिल्कुल कतराती हुई निकल जाती हो बैट्समैन के सामने से, वैसे में मुझे लगता है कि इस पिच पर खड़े होना और रन बनाना जब मुश्किल हो रहा हो, जहां श्रीलंका की टीम 76 पर सिमट जाए और जहां आयरलैंड की टीम 96 पे सिमट जाए, वहां भारतीय टीम ने जिस ग्रिट, जिस डिटर्मिनेशन, जिस संकल्प का परिचय दिया वो काबिले तारीफ है। हालांकि पिच की शिकायत हो रही है, बताया जाता है कि आईसीसी भी इस पे नजर रखे हुए है और वो ये देख रहे हैं कि कितने मैच हैं जो यहां अबैंडन हुए। आपको पता है कि ये घास जो यहां लगाई गई है ऑस्ट्रेलिया से लाई गई है, जो ये घास पिच पे लगाई गई है और इस घास को लगाने के बाद बहुत समय नहीं था पिच बनाने के लिए। और चिंता ये है कि जिस पिच पर यह मैच खेला गया, हालांकि शानदार प्रदर्शन रोहित का और बाकी के 4 पेसर्स का, जिसने रोहित शर्मा को ये कहने पर आज मजबूर कर दिया कि हमारी सिलेक्शन जो हुई है उसमें 4 स्पिनर्स को खिलाना शायद सही नहीं होगा इस पिच पर, क्योंकि ये तेज गेंदबाजों के लिए बनाई गई पिच है। जिस तरह से आपने कहा बुमराह, अर्शदीप और उसके बाद पांड्या और फिर सिराज ने भी जिस तरह से अच्छी गेंदबाजी की है, तो यहां तो तेज गेंदबाजों के लिए जय जय है।
पर अगर कल विराट कोहली का प्रदर्शन देखा जाए तो 1 विकेट पर आउट होकर चले गए।
देखिए खिलाड़ी, ये क्रिकेट का खेल है, ये कोई ऐसा खेल नहीं है जिसमें एक रिकॉर्ड आप बजाएं तो लगातार 3 मिनट तक गाना बजता रहेगा। ये कब बंद हो जाएगा कोई नहीं जानता। और विराट जैसे खिलाड़ी के लिए एक आध मैच में नहीं भी रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपसी कर सकते हैं। और हार्दिक पांड्या को आज का ही केस ले लीजिए, आप आईपीएल में कह रहे थे लोग कि नहीं चले, पता नहीं क्या होगा, हार्दिक पांड्या को क्यों टीम में रखा है, और अब हार्दिक पांड्या जब अच्छा खेल रहे हैं तो हम भूल गए कि आईपीएल में उन्होंने क्या किया। ऐसी चीजें होती रहती हैं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का, ग्लोरियस अनसर्टेंटीज का खेल है, इसके लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं।
तो आपका जो आप उस समय प्रदर्शन करते हैं वही मायने रखता है
उसी दिन उस वक्त उस टीम में। जी।
और अब जो सबकी निगाहें हैं वो जो मेन मैच होने वाला है भारत और पाकिस्तान का रविवार को, उस पर टिकी हुई हैं।
बिल्कुल, और भारत और पाकिस्तान का मैच जिसको मदर ऑफ ऑल बैटल्स कहते हैं, हालांकि किसी खेल विशेषज्ञ के लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। हर बैटल, हर लड़ाई जो खिलाड़ी लड़ता है, चाहे वो आयरलैंड के खिलाफ भारत खेले या पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक नर्व गेम भी होता है। दोनों टीमें एक ऐसी प्रतिद्वंद्विता है जिस प्रतिद्वंद्विता से टीम अपने मैच को एक नया रंग दे देती है। पूरी दुनिया की नजर इस पर लगी रहेगी। रविवार को मैच होना है, सुना जा रहा है कि एक ऐसी पिच जिसको अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया है उसको बचा कर रखा गया है इस मैच के लिए, हालांकि वो फैसला बदल सकता है अंतिम समय। जहां तक भारत और पाकिस्तान के अगर आप वीकनेसेस और स्ट्रेंथ, कमजोरी और मजबूतियों की तुलना करें तो भारतीय टीम बहुत मजबूत दिखती है, पाकिस्तान की टीम बिखरी बिखरी दिखती है। बाबर आजम जबरदस्त बैट्समैन हैं लेकिन कप्तानी में वो नहीं चल पाए हैं। राशिद लतीफ जो उनके पुराने कप्तान हैं उन्होंने आज एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि भारतीय टीम फेवरेट्स है। फेवरेट्स इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास बेहतर खिलाड़ी हैं, फेवरेट्स इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के जो तेज गेंदबाज हैं वो बहुत फिट नहीं है, फिटनेस की भयंकर समस्या है। गया जमाना वकार यूनिस और वसीम अकरम का जिनकी फिटनेस पर कोई सवाल या निशान लगा नहीं सकता था। तो ऐसे में जब तेज गेंदबाजों पर सब कुछ निर्भर करेगा और वो फिट नहीं है और बाबर आजम ऐसा लगता है कि कप्तानी के मनोवैज्ञानिक दबाव से ऐसा दब जाते हैं कि वो अपने खेल को भी ठीक से नहीं संवार पाते। ऐसे में चाहेंगे वो भी कि हम पूरी तरह से टीम का अच्छी तरह से सामना करें लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के मनोबल बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, और बाबर आजम की इस प्रदर्शन को लेकर काफी पहले भी आलोचना हो चुकी है, तो देखते हैं आप सबकी निगाहें टिकी हैं रविवार को क्या होता है। ये आप जब बैठेंगे देखेंगे तभी आप रोमांच उसको फील कर सकेंगे। अब बात है टेनिस कोर्ट की। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबिडन की जोड़ी फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में हार गई है। उन्हें इटली के सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावेसरी की जोड़ी ने 7-5, 2-6, 6-2 से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था और कमाल की बात यह है नीरव जी कि इसी जोड़ी को हराकर इस साल उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम था वो जीता था और आज जो फ्रेंच ओपन है वो इसी जोड़ी से हार गई सेमीफाइनल।
बिल्कुल लास्ट निराश भाई, क्योंकि आप देखिए कि बहुत आसान नहीं होता है सेमीफाइनल में पहुंचना और पिछले 3 वर्षों में दूसरी बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में बोपन्ना पहुंचे थे। उम्मीद थी जिस तरह के फॉर्म में इन बूढ़ी हड्डियों में भी इतना दम है कि लोग कह रहे थे कि इसने एक बार फिर से ऐसा कोई चमत्कार देखने को मिलेगा बोपन्ना के हाथों में। लेकिन यहां यह बताना जरूरी होगा कि जहां बोपन्ना के खेल में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी वहां उनके जो पार्टनर हैं मैथ्यू एबिडन वो शायद पूरी तरह से फिट नहीं थे। उन्होंने कई बार मेडिकल टाइम आउट लिया, बार बार उनको कहीं या तो दर्द था या कोई परेशानी थी जिसके कारण उस तरह से लय में नहीं खेल पाई भारतीय जोड़ी जिस तरह से खेलने की उनकी आदत रही है, जिस तरह का प्रदर्शन हम लोगों ने देखा है। तो इस तरह से हार बुरी हुई है मगर बोपन्ना के हौसले बुलंद होंगे क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचना भी अपने आप में बहुत आसान बात नहीं है। और अगर आप भारतीय खिलाड़ियों को ही देख लें इस मैच में तो कोई कहीं आगे बढ़ नहीं पाया, सुमित नागल पहले में राउंड में ही बाहर हो गए थे।
तो 44 वर्ष के रोहन बोपन्ना ने आज भी अपना दमखम दिखाया और सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई लेकिन हार गए। और उधर महिला सिंगल सेमीफाइनल मुकाबले भी खेले जा रहे हैं। पोलैंड की इगा स्वियातेक सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर फाइनल में पहुंच गई हैं और दूसरा सेमीफाइनल इटली की जैस्मिन पावलिनी और रूस की मीर एंड्रीवा के बीच है। काफी अच्छी प्लेयर अमरीका की मानी जाती है, कोको गॉफ उनको हरा दिया अब सेमीफाइनल में।
बट स्वियातेक फेवरेट्स थी इस मैच में, ये कहा जा रहा था कि स्वियातेक को हराना आसान नहीं होगा और जिस तरह से आसानी से उन्होंने जीत हासिल कर ली मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आशा के अनुरूप ही परिणाम रहा। लेकिन अगर हम महिलाओं की ही बात कर रहे हैं और दूसरी महिला जोड़ी की बात करें तो जो रूस की खिलाड़ी एंड्रीवा हैं उन्होंने जो 17 वर्ष की उम्र में ये काम किया है जिस तरह से वो उन्होंने ऐसा कोई खिलाड़ी अभी तक नहीं हुआ है जो फ्रेंच ओपन में इस उम्र में यहां तक पहुंचा हो। और एक मार्टिना हिंगिस के बारे में कहा जाता था कि कम उम्र में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया लेकिन यहां बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया है और जिस तरह से आप देख रही हैं फ्रेंच ओपन बढ़ रहा है आगे उसमें एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा आगे भी ऐसा मुझे लगता है।
और जी हाँ, पावलिनी का भी अगर देखा जाए तो पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम के अंतिम चार में पहुंची हैं कल उलट फेर करके, तो जो दूसरा सेमीफाइनल है वो भी अब देखने लायक होगा। और आपको बता दें कल पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज का सामना इटली की यानिक सिनर से होगा, दूसरे सेमीफाइनल में नॉर्वे की कैस्पर रूड और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने सामने होंगे। बैडमिंटन कोर्ट की बात, इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जापान के केंता निशिमोता को 21-9, 21-15 से हराया। वहीं प्रियांशु राजावत को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना पड़ा। और महिला डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में भी अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी हार गई है। मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में सुमित रेड्डी और एनसीकी रेड्डी की जोड़ी को भी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई और अब लक्ष्य सेन के अलावा निगाहें टिकी हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी पर जो अब पहले दौर में अपना मुकाबला खेलेंगी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि भारत निशानेबाज सरबजोत सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। मलय जी आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद
श्रोताओं, अब प्रियंका अरोड़ा को स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।